نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پیج نمبر 132 سے کنٹینیو کریں گے. ٹاپک ہے التوحید فی الصفات، توحید صفات. اس سے پہلے ہم نے توحید کی دو قسمیں دیکھ لیں، اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا گہرائی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں گے کہ کہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی کہ جہاں ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہوں. تو مسئلہ نمبر 47 ہے، کائنات کی ہر چیز کا حقیقی مالک اور بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کی دلیل سورۃ حشر آیت 23، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، سراسر سلامتی اور امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. اور اسی کی دلیل میں صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، ان الملک، این الجبارون، این المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، آج کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے اور تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. تصور میں آتی ہے یہ چیز، کیا کیفیت ہوگی وہ کہ جب اللہ کی ذات آسمانوں اور زمینوں کو ہاتھوں میں لے کے لٹو کی طرح گھمائے گا. اس دن دنیا کی ساری بادشاہتوں کے پول کھل جائیں گے. حقیقت ہے کہ آج دنیا میں اگر کسی کو تھوڑی سی بادشاہت تو کیا بادشاہت کا ایک معمولی سا حصہ ہی مل جائے، وزیر اعظم ہونا تو کیا ایک ہلکی سی وزارت ہی کیوں نہ مل جائے، تو انسان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. اور بعض دفعہ پھر انسان اس معاملے میں دوسروں پہ ظلم اور زیادتی بھی کرنے لگتا ہے، یہ سوچ کے کہ شاید میں ہمیشہ یہیں رہوں گا، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ بادشاہ حقیقی اللہ کی ذاتی، جس کو اللہ تعالیٰ کے المالک اور الملک ہونے کا احساس ہو جائے گا. پھر اس کو کبھی اپنے آپ کو کسی گھر کا مالک مکان کہلانا سوٹ نہیں کرے گا. کبھی بھی کسی چیز کو یہ سوچ کے پکڑے نا کہ یہ میری ہے، یہ میری ملکیت ہے. اپنی بلانگنگس کو دیکھیں. ابھی یہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بک کس کی، آپ کہیں گے یہ میری ہے، یہ بیگ کس کا ہے، یہ میرا ہے، یہ قلم کس کا ہے، یہ میرا ہے. لیکن یہ ملکیت کتنے دیر ہے، جب تک ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں یا یہ چیز موجود ہے. ہم مالک تو ہیں لیکن مکمل مالک نہیں. ایک ہوتی ہے ملکیت تام، مکمل ملکیت، اس میں نہ صرف آپ مالک ہوتے ہیں بلکہ تبدیلی کرنے کے مجاز بھی ہوتے ہیں. آپ اس کو چینج کریں، آپ اس کو بیچیں، آپ اس کو توڑیں، آپ اس کو ٹھیک رکھیں. لیکن ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ مالک تو ہوتے ہیں لیکن آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے. ہم دنیا میں جو کچھ رکھتے ہیں اگر اس کو ان دونوں چیزوں پہ رکھ کے دیکھ لیں تو اللہ کی ذات مالک بھی ہے اور تبدیلی بھی کر سکتا ہے. ہماری آنکھیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے دے، ان کو روشنی کم کر دے. ہم بھی اپنی آنکھوں کے مالک ہیں لیکن ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. اگر کسی کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں ساری دنیا کے ڈاکٹر بے بس ہو جائیں گے، لیکن ان کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکے گا. اگلی چیز مسئلہ نمبر 48، کائنات میں حکومت اور فرما روائی کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. اس کی دلیل سورۃ یوسف کی آیت 40 ہے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. हुक्म देना सिर्फ अल्लाह ही का हक है। उसने ये हुक्म दिया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए। यही सीधा रास्ता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और दलील है रिवायत हदीस में से सही बुखारी की रिवायत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा से। यहाँ आप देख रहे हैं कि अब्बास के नाम के आगे अन्हुमा लगा है। इसका लफ्ज़ी मान होता है उन दोनों पे अल्लाह का रहम हो। सवाल पैदा होता है कि सहाबी तो एक हैं तो अनहुमा क्यों है? तो यहाँ एक छोटी सी बात नोट कीजिएगा कि वो सहाबी जिनके बाप भी सहाबी हों, जब कभी उनका नाम आता है तो फिर उनके साथ रदी अल्लाहु अनहु नहीं बल्कि अनहुमा आता है। चूँकि इब्ने अब्बास के बाप हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी थे, तो लिहाजा रदी अल्लाहु अन्हुमा। बात छिड़ी है तो यहाँ वो भी जिक्र कर दूँ कि बाज़ लोग जब पढ़ते हैं तो सही प्रोनाउंस नहीं करते, अनहा और अनहो का फ़र्क नहीं रखते। अनहा आता है औरत के लिए, आयशा रदी अल्लाहु अनहा, और अनहो आता है मुज़क्कर के लिए, जैसे इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अनहो। लेकिन यहाँ चूंकि उनके बाप थे तो अनहुमा। ये छोटा छोटा फ़र्क होता है। बाज़ दफ़ा आप बहुत पढ़े लिखे भी होते होंगे, लेकिन आप पढ़ा भी रहे होते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले ऐसी सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि अगर कोई इल्म वाला सुन रहा हो तो वो समझ जाएगा कि आपने इस चीज़ की गहराई को नहीं महसूस किया। तो यहाँ खुशबख्त हैं वो बाप कि जिनके बेटे का नाम लिया जाए, और साथ ही बाप के लिए भी ये जुमला आ जाए कि रदी अल्लाहु अन्हुमा। से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम जितनी मर्तबा हमारे पास आते हो इससे ज़्यादा क्यों नहीं आते? दिल चाहता था कि जिब्राईल ज़्यादा दफ़ा आए। उस पर रियायत नाजिल हुई, क्या क्या नबी, हम तुम्हारे रब के हुक्म के बग़ैर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे और पीछे है, नीज जो कुछ इसके दरमियान है, इसका मालिक वही है और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। यह आयत अल्लाह के नबी के मुतालबे का जवाब थी जो आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से किया था। तो इससे पता चला कि फरिश्तों का आना या जाना ये भी अल्लाह के इख्तियार में है। अगला मसला है 49। नज़्म कायनात और अमूर कायनात का मुदब्बिर सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है। इसकी दलील सूरत रात की आयत नंबर 2 है, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सतूनों के बग़ैर कायम किया जो तुमको नज़र आते हों, फिर वो अर्श पर जलवा फरमा हुआ। सूरज और चाँद को एक कानून का पाबंद बनाया। कायनात की हर चीज़ उसके हुक्म से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है। अल्लाह ताला ही के लिए कायनात के सारे उमूर की तदबीर फरमाना है, यानी अल्लाह ताला ही कायनात के सारे उमूर की तदबीर फरमा रहा है। अल्लाह ताला अपनी तौहीद की निशानियां खोल खोल कर बयान कर रहा है ताकि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर लो। इसी की दलील सही मुस्लिम की रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, अल्लाह के नबी का इरशाद मुबारक है, अल्लाह सुबहान ताला फरमाता है, इब्ने आदम ज़माने को गाली देता है, हालांकि ज़माना तो मैं हूँ, दिन रात मेरे कब्ज़े कुदरत में है। ये ज़माने को गाली देना क्या होता है? बाज़ दफ़ा लोग, और कोई मशगला नहीं होता ना, तो मौसम को बुरा भला कहेंगे, आजकल मौसम बड़ा गंदा है, आजकल मौसम बड़ा ख़राब है, आज तो बड़ी गर्मी है, आज तो बड़ी सर्दी है। और कुछ नहीं होगा तो क्या कहेंगे, आज का दौर बड़ा ख़राब दौर है, आजकल तो बहुत बुरे हालात हैं। ना कहा करें, ज़माना अल्लाह की ज़ात है, अनहद दहर हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं मैं ज़माना हूँ, तो मुझे बुरा कहते हो? नहीं बुरा, ज़माना बुरा नहीं, लोग बुरे हैं, उनके आमाल किसी दौर को फसाद वाला और मुसीबतों वाला और मशक्क़तों वाला करवा देते हैं। तो लिहाजा इंसान को ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि इस कायनात के सारे निज़ाम चूँकि अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, लिहाजा इसकी किसी चीज़ पे तनकीद करने की गुंजाइश नहीं। बस आप देखिए कि कोई फौत हो जाता है तो अमूमन लोग कहते हैं हाय अभी तो इसका वक्त नहीं आया था, हाँ ये तो बेवक़्त की मौत मर गया, हाँ इसको तो अभी नहीं मरना चाहिए था। नहीं कहिए, ये इतने बारीक नुक्ते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारी तौहीद पे इससे हर्फ आने लगता है। अगली बात, ज़मीन व आसमान के तमाम ख़जानों का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है। सोचिए ज़रा क्या जुमला है, सारे ख़जाने उसके हैं, सारा सोना, सारी चांदी, सारे हीरे, सारे माइंस, सारा ऑयल, सब कुछ उसका है। तो फिर वो उससे कितना मरूब होने की ज़रूरत है। दुनिया में किसी के पास अगर थोड़ा सा भी माल होता है तो हम बहुत मरूब होने लगते हैं, लेकिन ज़मीन और आसमान के मालिक से हम कितना मरूब होते हैं ये हर एक खुद सोचेगा। दलील है सूरत अनाम की आयत 50, कुल ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ए नबी इनसे कहो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ और ना ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ़ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर इनसे पूछो क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या तुम गौर नहीं करते। कितना प्यारा अंदाज़ है ना बात समझाने का। और इसी की दलील में रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला का हाथ भरा हुआ है, खर्च करने से इसमें कमी नहीं आती, रात दिन इसकी बख्शिश जारी है। आपने फरमाया ज़रा गौर करो ज़मीन और आसमान की तख्लीक पर अल्लाह ताला ने कितना खर्च किया, लेकिन इससे इसके ख़जाने में कुछ भी कमी नहीं हुई। आप सिर्फ बारिश के ख़जाने को देख लें। हम तो ये कह के अपना दामन छुड़ा लेते हैं ना, क्या मुश्किल है, हर वक्त बारिश रहती है, कभी तो रोशनी हो कभी तो सूरज निकले, लेकिन ज़रा ये भी तो सोचिए ये इतना पानी आता कहाँ से है। हम अपनी टैब खुली छोड़ देना तो थोड़ी देर के बाद हमारी टंकी खाली हो जाएगी, हमें बिल आने लगेगा। जब किसी मुल्क में पानी की कमी होती है तो वहाँ बाकायदा एड्स चलते हैं कि पानी ज़ाया ना करें। चले बिजली को देख लें, हमारे मुल्कों में जो बिजली की लोड शेडिंग होती है क्या बताती है कि इंसान सारे रिसोर्सेज हासिल करने के बावजूद फिर भी मजबूर है, लेकिन अल्लाह की ज़ात कितना पानी बरसाता है, कितनी हवा चलती है, ज़मीनों से कब से क्या कुछ उगल रहा है, अभी भी इस ज़मीन के अंदर न जाने क्या क्या ख़जाने हैं जिसको अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किए। तो जिस मालिक के हाथ में इतना कुछ हो क्या फिर उससे नहीं डरेंगे, क्या फिर उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, और क्या उसके काम को करना अपनी सआदत महसूस नहीं करेंगे। दुनिया में कोई इंसान चार पैसे वाला होता है तो लोग उसका काम करना खुशी महसूस करते हैं, किसी बड़ी फर्म से अगर जॉब की ऑफ़र आ जाए तो सबको दिखाते हैं देखो मुझे इतनी जगह बड़ी जगह से ऑफ़र आई। जब अल्लाह के काम की ऑफ़र आए तो इससे भी ज़्यादा खुशी मनाए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो तेरी एम्प्लॉई हूँ, मैं तो तेरी वर्कर हूँ, मैं तो तेरे दीन की खादिमा हूँ, मैं तेरा काम करूँगी। और जो इंसान अल्लाह के ख़जानों पे निगाह रखता है ना, फिर उसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए होता। कुछ मिल जाए तो एक उसकी ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ हो सकती है, लेकिन उसकी तलब नहीं होती। हमारे लिए इस बात पे अमल की यही बात है कि कभी दुनिया की कोई चीज़ चाहिए हो, कोई तलब करनी हो, या किसी की किसी चीज़ से मरूब हो, तो फ़ौरन इस बात को सोच लें कि सब कुछ तो अल्लाह तेरे हाथ में, तू मुझे दे सकता है, औलाद तेरे हाथ में, माल तेरे हाथ में, हुसन तेरे हाथ में, तो ऐ अल्लाह तू मुझे भी ये नेमतें अता कर, या अगर तूने मुझे ये नेमतें दी हैं तो इसके जवाल से महफूज रखना। अगली बात, क़्यामत के रोज़ सिफारिश करने की इजाज़त देने या ना देने और सिफारिश कबूल करने या ना करने का सारा इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। इसकी दलील सूरत ज़ुमर की आयत 43 और 44 हैं, अमित तखज़ु मिन दूनिल्लाहि शुफ़ाआ, तर्जमा है क्या अल्लाह ताला को छोड़कर इन लोगों ने दूसरों को सिफारशी बना रखा है, इनसे कहो क्या वो सिफारिश करेंगे ख्वाह इनके इख्तियार में कुछ भी ना हो और ख्वाह वो मुर्दे तुम्हारी बातें समझते भी ना हो। कहो सिफारिश सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे सिफारिश की इजाज़त दे, जिसे चाहे ना दे, और जिसकी चाहे सिफारिश कबूल करे और जिसकी चाहे ना करे, आसमानों और ज़मीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर इसकी तरफ तुम सब मरने के बाद पलटाए जाओगे। और इसी मज़मून की दलील एक बड़ी खूबसूरत रिवायत से होती है, सही बुखारी की रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से, इसको सुनते वक्त इमेजिन भी कीजिएगा, इस क्लासरूम से बाहर सोच के अपने आप को उस मैदाने महशर में सोचिएगा जहाँ का वाकया हमारे सामने रखा जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को इकट्ठा करेगा और लोग कहेंगे कि अपने परवरदिगार के हजूर सिफारिश करवानी चाहिए ताकि वो इस जगह से हमें निजात दिलाए। यहाँ रुक के एक पॉइंट देना चाहूँगी कि ये सिफारिश बख्शिश की नहीं है। अमूमन हमारे यहाँ सिफारिश के साथ ये तसव्वुर आता है कि जन्नत में जाने या जहन्नुम में जाने के बारे में होगी, या अल्लाह ताला हमें बख्श दे या ना बख्शे, वो सिफारिश मुख्तलिफ है। ये सिफारिश है कि अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। यानी कयामत का दिन इतनी गर्मी और इतनी वहशत वाला होगा कि वहाँ अगले पिछले जब जमा हुए होंगे कितना रश होगा और हिसाब ही नहीं शुरू होगा। तसव्वुर में लाएं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, फिक्र लगी हुई है, इतना उस वक्त वहशत का आलम होगा कि लोग कहेंगे कुछ भी हमारा अंजाम होना है, अब जल्दी से हो, बस एक दफ़ा हिसाब शुरू हो जाए ताकि हम अपने अपने ठिकानों पर पहुँचें। लेकिन अल्लाह की ज़ात देखिए इतना बेनियाज है, लोगों को जमा किया और हिसाब शुरू नहीं हो रहा, लिहाजा अब लोग कहेंगे कि चलो किसी बंदे को ढूंढते हैं कि जो अल्लाह ताला से सिफारिश करे कि अल्लाह ताला हिसाब शुरू करें। फिर लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे आप वो हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया, फिर अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों को हुक्म दिया कि आपको सजदा करें, लिहाजा आप रब के हजूर हमारी सिफारिश करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक कहाँ, और अपनी ख़ताएं याद करके कहेंगे, लोगों से कहेंगे आप लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं, वो पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने भेजा। लोग इनके पास सिफारिश का मुतालबा लेकर चल जाएंगे और वो कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं, और अपनी ख़ताएं याद करेंगे। यहाँ तो इस हदीस में सिर्फ ख़ताओं का लफ्ज़ है ना, लेकिन और रिवायात से मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो दरख्त का फल चख लिया था ना उसको याद करेंगे, और इनको इतना गम आएगा कि न जाने अल्लाह ताला आज दोबारा ना मुझसे इस बारे में पूछ ले कि तुमने उस दरख्त का फल क्यों खाया था। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौन सा गुनाह याद आएगा कि मैंने अपने मुशरिक बेटे के लिए बख्शिश की दुआ कर ली थी, लिहाजा वो कहेंगे कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, अल्लाह ताला ने इन्हें अपना दोस्त बनाया है। लोग हज़रत इब्राहीम के पास जाएंगे, वो कहेंगे मैं इस लायक नहीं, और अपनी ख़ताएँ याद करेंगे। हज़रत इब्राहीम की ख़ताएँ क्या थी? एक और रिवायत में आता है कि आपने ज़िंदगी में 3 झूठ बोले थे जो बज़ाहर झूठ लगते थे लेकिन हकीकत में वो झूठ नहीं थे, और उन झूठों की वजह से परेशान होंगे, जिसमें यानी उनका अपनी बीवी को बहन कहना भी था। एक मौके पे उनकी बीवी कहीं रोक ली गई थी और जालिम बादशाह था, तो वो किसी की बीवी को तो पकड़ता था लेकिन अगर कोई किसी की बहन होती थी तो उसको जाने देता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के बारे में ये कह दिया था कि ये मेरी बहन है, हालांकि मुफस्सरीन कहते हैं कि उस वक़्त उन्होंने उनको दीनी बहन कहा था, क्योंकि दुनिया में उस वक़्त यही लोग थे दो जो दीन इस्लाम पर थे। तो बहरहाल इस तरह के मामूली से झूठ थे जो बज़ाहर झूठ लगते थे उस पर परेशान होंगे। हम सब साथ साथ अपना भी मुहासबा करते जाएँ कि हमारी ज़िंदगी में क्या हालात होंगे, और उनके तो गुनाह माफ़ हो चुके हैं और इसके बावजूद वो उस दिन परेशान होंगे, हमारे पास तो कोई सनद भी नहीं अपने किसी गुनाह की माफ़ी की। चुनाच इब्राहिम कहेंगे कि आप मूसा के पास चले जाओ, इनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया है। चुनाचे लोग मूसा के पास आएंगे, वो कहेंगे मैं इस काबिल कहाँ, और अपनी ख़ताएँ याद करेंगे। कौन सी ख़ता? जो उन्होंने एक मुक्का मारा था और कत्ले ख़ता हुआ था बेसिकली, यानी जानते बूझते नहीं बल्कि अनजाने में एक शख्स का कत्ल हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आप ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाइए। हज़रत ईसा के पास लोग आएंगे, वो कहेंगे मैं भी कहाँ इस लायक, कहाँ यानी हज़रत ईसा को क्या गुनाह याद आएगा कि मेरे बाद मेरी कौम ने मुझे खुदा बना लिया था और मैंने तो इसका हुक्म नहीं दिया था। तो वो इस पर इतना खौफ खाएंगे कि कहीं आज अल्लाह ताला मुझसे पूछ ना ले इस बारे में। चुनाचे वो कहेंगे कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, इनके सारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए। चुनाचे लोग मेरे पास आएंगे और मैं अपने रब से हाजिरी की इजाज़त तलब करूँगा, जब मैं अल्लाह ताला को देखूंगा तो सजदे में गिर पड़ूंगा, जब तक अल्लाह ताला चाहेगा मुझे सजदे में पड़ा रहने देगा। फिर फरमाए गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब खामोशी से कहा करें या ऊंची, लेकिन जो ही अल्लाह के नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी सी आवाज़ से, इसलिए कि दूसरा अगर भूला हुआ तो उसको भी याद आ जाए, लेकिन हर एक अपना इंडिविजुअल तौर पर कहेगा, इनफरादी तौर पर आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे अल्लाह ताला? कै मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ और मांगे मांगो दिए जाओगे, बात कहो सुनी जाएगी, सिफारिश करो मानी जाएगी। चुनाचे इजाज़त मिलने के बाद अपना सर सजदे से उठाऊंगा और अपने रब की वो हम्दो सना करूंगा जो इस वक्त अल्लाह ताला मुझे सिखलाएगा। और इसके बाद लोगों के लिए सिफारिश करूंगा। चुनाचे मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी और इस हद के अंदर जो लोग होंगे सिर्फ इनको दोजख से निकाल कर बहिश्त में ले जाऊंगा। फिर मैं अपने रब के हजूर हाजिर होऊंगा और इसी तरह हाजिर होऊंगा और इसी तरह सजदे में गिर पड़ूंगा। चुनाचे तीसरी या चौथी बार मैं अपने रब से अर्ज करूंगा, परवरदिगार अब तो जहन्नम में सिर्फ वही लोग रह गए हैं जो कुरान के मुताबिक हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं, यानी मुशरिक और काफिर। तो इससे पता चलता है कि सिफारिश भी वही कर सकता है जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देंगे। फिर अगला मसला है, क़यामत के रोज़ जजा या सज़ा देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को होगा। दुनिया में बाज़ दफ़ा लोग बाज़ बुज़ुर्गों के पास इस इख्तियार को समझते हैं और बाज़ अल्लाह के नबियों के पास, लेकिन हकीकत है कि पूरे का पूरा इख्तियार अल्लाह के पास होगा। दलील है सूरत तहरीम की आयत नंबर 10, वदरब अल्लाह मसलसी कफरू। अल्लाह ताला काफिरों के मामले में नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करता है। वो हमारे दो साले बंदों की जौजियत में थीं, मगर उन्होंने अपने शोहरों से खयानत की, यानी काफिरों से साजबाज की, और वो दोनों यानी लूत और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुकाबले में इन बीवियों के कुछ भी काम ना आ सके। दोनों से कह दिया कि आके जाओ आग में जाने वालों के साथ, तुम भी आग में चली जाओ। यानी अल्लाह के नबी हैं, और आप देखिए कितने साल तबलीग है। हज़रत नूह को देख लें, 950 साल, 950 ईयर्स तबलीग की, और अपनी बीवी को ही नहीं मनवा सके। कौन किसको मनवा सकता है जब तक अल्लाह ताला ना चाहे? और वो बीवी को जन्नत में नहीं ले जाएंगे, नहीं जा सकते। हम सोचते हैं आज ज़रा सा कोई नेकी में का नेकी का काम कर ले तो पता नहीं नाउज़ुबिल्ला उसका अल्लाह ताला के साथ कोई एग्रीमेंट हो गया, लोग उसे आके कहेंगे दुआ कर दें, और दिल में ज़ोम ये रखते हैं कि इसकी दुआ कबूल होगी, ये भी शिर्क हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को किसी तरह से नहीं मिला सकते। 950 साल की इबादत करने वाला अपनी बीवी को नहीं बचा पा रहा, हम जैसे टूटे फूटे काम करने वाले किस चीज़ की उम्मीद रख के बैठे हुए। फिर इसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, उनका भी यही हाल था। और इसी बात की दलील एक वो हदीस है सही बुखारी की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि जब ये आयत उतरी कि वानज़िर अशीरतक अलअक़रबीन, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों को क़यामत से डराओ, तो आपने खड़े होकर फरमाया, ऐ कुरैश के लोगों, ये ऐसा ही जुमला कहा, अपनी जानें बचाओ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूँगा। ऐ अब्द मनाफ के बेटो, ये कबीले का नाम था, क़यामत के रोज़ मैं अल्लाह ताला के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। ए अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह ताला के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। ए सफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, मैं अल्लाह ताला के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। और ए फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में मेरे माल से जो चाहो मांग लो, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूँगा। इतनी वाज़े बात है, इसके बावजूद आप देखिए कि लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम हमारी सिफारिश करके हमें बख्शवा लेंगे। जब तक अल्लाह ना चाहे किसी को ना बचत होगी, ना किसी की जजा है, ना किसी की सज़ा। फिर एक और इख्तियार जो अल्लाह ताला के पास है सिर्फ, वो क्या है? गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, या ना करे या करे माफ़, दोनों उसके हाथ में। सूरत तौबा की आयत नंबर 80 में आता, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम। ए नबी, तुम ख्वाह इन मुनाफिकों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त करो या ना करो, एक ही बात है। अगर तुम 70 मरतबा भी इन्हें माफ़ करने की दरख्वास्त करोगे तो अल्लाह ताला हरगिज़ इनको माफ़ नहीं करेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़र किया, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। हदीस में जो दलील है वो सही बुखारी की रिवायत है, उम्मुल आला अल अंसारिया रदी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कि मरने के बाद मेरे साथ क्या मामला होगा। सही बुखारी की रिवायत है। अब देखिए, अल्लाह के नबी को नहीं पता कि मरने के बाद उनको जन्नत मिलेगी, कौन सा मुकाम मिलेगा, आला मिलेगा, अदना मिलेगा, तो किसी और को कैसे पता हो सकता है? तो बहुत ही वाज़े बात है इसमें कि किसी के गुनाहों की माफ़ी का इख्तियार अल्लाह के हाथ में, हमें नहीं पता कि हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और हमें नहीं पता कि हमारे गुनाहों पे हमें सज़ा दी जाएगी और उसके बाद जन्नत मिलेगी। हर बंदे को फिक्र तो ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन यकीन किसी को नहीं कि उसके साथ क्या होगा। इस पे मैं थोड़ी सी बात करूँगी क्रिश्चियनिटी के नज़रिए पार्डन पे। आपको मालूम है कि क्रिश्चियनिटी में पार्डन बिकती है, जो गुनाह कर लो आप प्रीस्ट के पास जाओ, पादरी के पास, और माफ़ीनामा ख़रीद लो, और उसके पैसे होते हैं। आपको $100 वाला ख़रीदना है, या 50 वाली माफ़ी ख़रीदनी है, या आपको 25 वाली ख़रीदनी है। और फिर एक और नज़रिया जो उन्होंने अपने सोच में रखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारे गुनाहों की माफ़ी में सूली पे चढ़ चुके हैं। तो इस्लाम का नज़रिया से कितना मुख्तलिफ है, हत्ता कि अल्लाह का नबी भी अपनी मर्ज़ी से किसी को माफ़ नहीं कर सकता और ना किसी को सज़ा दे सकता है। तो जिस रब के हाथ में ये सारी इख्तियारात हैं, हमारा उसके साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, सोचने की बात है ना। कोई भी गुनाह करे ना, तो इसे इस चीज़ को ज़रूर सोचिए उस वक़्त कि अल्लाह सिर्फ़ आप ही हैं जो गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं। मैंने तो गुनाह कर लिया, अब आप मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दें।